हम सब खुशी की तलाश में हैं, मतलब ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर जिस दिशा में हम खुशी ढूंढ रहे हैं वही हमें और भी ज्यादा दुखी और खाली बना रही हो?
हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज का हमारा समाज ना हमें लगातार यही सिखाता है कि बस खुद को प्राथमिकता दो और अपनी भावनाओं को सबसे ऊपर रखो।
बिल्कुल, अपनी एक ऐसी छवि बनाओ जिसे दुनिया देखे और सराहे। लेकिन फिलिपियों के एक प्राचीन पत्र में कुछ ऐसा लिखा है जो इस पूरी आधुनिक सोच को एकदम जड़ से पलट कर रख देता है।
जी, और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम डॉक्टर मैथ्यू एस हार्मोन द्वारा किए गए विश्लेषण पर बात करेंगे। उन्होंने अध्याय 2 की आयत 1 से 4 का जो विश्लेषण किया है ना, वो सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं है।
सही कहा, ये असल में मानव मनोविज्ञान, हमारे अकेलेपन और उस सच्चे आनंद को समझने की एक चाबी है जिसे हम सब खोज रहे हैं।
एकदम सही। हमारा मकसद आज सिर्फ इन आयतों को पढ़ना नहीं है बल्कि उस तंत्र को समझना है जो ये दावा करता है कि सच्चा आनंद खुद को संवारने में नहीं है
बल्कि वो निस्वार्थ भाव से एक साझा जीवन जीने में छिपा है। तो ठीक है, चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। जब हम इन 4 आयतों को पढ़ते हैं तो सतह पर ये बस कुछ अच्छे नैतिक उपदेशों का समूह लगता है।
हाँ, जैसे दूसरों से प्यार करो या अच्छे इंसान बनो।
मतलब हम सब ने यही सुना ना बचपन से।
वही तो। लेकिन डॉग हार्मन बताते हैं कि इसके नीचे यूनानी व्याकरण का एक ऐसा ढांचा है जो पूरी कहानी ही बदल देता है। इस विरोधाभास की जड़ उस मूल यूनानी भाषा की संरचना में ही छिपी है।
अच्छा, तो मतलब अनुवाद में कुछ खो गया है क्या?
हाँ, काफी कुछ। आधुनिक अनुवादों में हमें 4 अलग अलग आयतें दिखाई देती हैं। हमारी आदत होती है कि हम हर आयत को एक अलग नियम की तरह पढ़ते हैं।
सही बात है।
लेकिन मूल यूनानी पांडुलिपियों में ये पूरा का पूरा हिस्सा वास्तव में एक ही लंबा अखंड वाक्य है। पॉलुस, जो इस पत्र के लेखक हैं, वो अलग अलग विचार नहीं दे रहे हैं।
अरे वाह, तो वो एक साथ कोई बड़ा पॉइंट बना रहे हैं।
एकदम सही, वो एक बहुत ही मजबूत तर्क का निर्माण कर रहे हैं और इसकी शुरुआत वो एक प्रथम श्रेणी के सशर्त वाक्य यानी फर्स्ट क्लास कंडीशनल स्टेटमेंट से करते हैं।
एक मिनट, ये प्रथम श्रेणी का सशर्त वाक्य क्या होता है? क्योंकि सामान्य भाषा में तो सशर्त वाक्य का मतलब है जहां हम अगर और तो का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर बारिश हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा।
हाँ, उसमें एक अनिश्चितता होती है। लेकिन प्राचीन यूनानी व्याकरण में सशर्त वाक्यों के कई स्तर होते थे। जब पॉलुस यहाँ प्रथम श्रेणी के सशर्त वाक्य का उपयोग करते हैं तो उस अगर में कोई शंका या संदेह नहीं है।
तो क्या वो इसे एक सच मानकर चल रहे हैं?
जी बिल्कुल, व्याकरणिक रूप से इसे तर्क के लिए पहले से ही 100% सच मान लिया गया है। इसका मतलब है कि जब वो कहते हैं कि अगर मसीह में कोई प्रोत्साहन है तो वो कोई संभावना नहीं जता रहे हैं।
अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि चूंकि ये एक स्थापित तथ्य है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये सच है।
हाँ, और इसके आधार पे ही आगे का जीवन तय होगा। पॉलुस स्पष्ट रूप से 4 विशिष्ट लाभ गिनाते हैं जो हर उस व्यक्ति के पास पहले से मौजूद है जो इस साझा जीवन का हिस्सा है।
ये तो चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही व्यवहारिक उपमा ले सकते हैं। ये बिल्कुल एक बैंक खाते की तरह है।
बैंक खाते की तरह? वो कैसे?
देखिए, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बाजार में खड़ा है और उसे कुछ बहुत महंगा खरीदना है। अब अगर उसका बैंक खाता खाली है तो वो खरीदारी तनावपूर्ण और असंभव होगी ना?
हाँ बिल्कुल, असंभव ही होगी।
वही बात है, ये यूनानी व्याकरण हमें ये बता रहा है कि खाते में पैसे पहले से ही जमा है, भारी मात्रा में जमा है। ये ऐसा नहीं है कि हम खालीपन से शुरुआत करके आनंद कमाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। सुसमाचार के लाभ उस खाते में पहले से मौजूद हैं। अब चुनौती ये धन कमाने की नहीं है बल्कि ये है कि हम इस अकूत धन का उपयोग कैसे करें।
सही, और वो 4 लाभ क्या हैं जो इस खाते में जमा है?
पहला है मसीह में प्रोत्साहन, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दूसरा है प्रेम से मिलने वाली सांत्वना, जो हमारी उन भावनात्मक चोटों को भरती है।
और बाकी 2?
तीसरा है आत्मा में सहभागिता, जिसका अर्थ है एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव जो हमें अकेलेपन से बाहर निकालता है। और चौथा है गहरा स्नेह और सहानुभूति, जो हमारे अंदर की कठोरता को खत्म करता है।
ये बहुत ही खूबसूरत बात है।
हाँ, और डॉक्टर हामन इस बात पर जोर देते हैं कि इन चार लाभों में एक त्रिमूर्ति संरचना या ट्रिनिटेरियन स्ट्रक्चर छिपा हुआ है।
त्रिमूर्ति संरचना मतलब इसमें ईश्वर के तीन स्वरूपों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का समावेश है। लेकिन ये तकनीकी बात हमारे रोजमर्रा के आनंद से कैसे जुड़ती है?
देखिए, ये सिर्फ एक तकनीकी या धर्मशास्त्रीय शब्द नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि आनंद की ये नींव कितनी मजबूत है।
अच्छा,
जब हम कहते हैं कि इसमें त्रिमूर्ति संरचना है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को मिलने वाला प्रोत्साहन या सांत्वना किसी इंसान के अस्थिर मूड पे निर्भर नहीं है।
यानी ये सीधे ब्रह्मांड के निर्माता की प्रकृति से आ रही है।
बिल्कुल, मसीह का प्रोत्साहन, ईश्वर के प्रेम की सांत्वना और पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये तीनों मिलकर एक ऐसा सुरक्षा जाल बनाते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता।
और यहीं से उस खाते में जमा धन को खर्च करने की बात शुरू होती है, क्योंकि इसके ठीक बाद एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा आदेश आता है कि मेरे आनंद को पूरा करो।
हाँ, मतलब आनंद की शुरुआत हो चुकी है, बस उसे उसके चरम तक ले जाना बाकी है।
डॉक्टर हामन का भी यही मानना है ना कि सच्चे आनंद की खोज करना कोई स्वार्थी गुण नहीं है, बल्कि ये हमारा मूल स्वभाव है।
बिल्कुल, हमें इसी तरह इसी डिजाइन के साथ बनाया गया है, लेकिन असली त्रासदी यह है कि इंसान उस आनंद को उन जगहों पर खोजता है जहां वो कभी मिल ही नहीं सकता।
और इसी गलतफहमी ने धर्म और आध्यात्मिकता की पूरी छवि को बिगाड़ कर रख दिया है। डॉक्टर हामन एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि आज कई लोग ईश्वर को एक ब्रह्मांडीय आनंद नाशक या कॉस्मिक किल जॉय मानते हैं।
हाँ, ये बहुत आम सोच बन गई है आजकल।
तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर हम धर्म के पारंपरिक नजरिए को देखें तो कई बार लगता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब ही है अपनी इच्छाओं का गला घोटना।
हाँ, लोगों को लगता है कि जीवन सिर्फ कठोर दिनचर्या का पालन करने और दुख सहने के लिए है।
वही तो, अगर ये सच है तो फिर आनंद को पूरा करने का ये आदेश उस कठोर आत्मत्याग वाले विचार से कैसे मेल खाता है? क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता?
ये विरोधाभास सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हम ना अनुशासन और आनंद को एक दूसरे का दुश्मन मान बैठते हैं। ईश्वर कोई ऐसा तानाशाह नहीं है जो इंसानों को खुश देखकर चिढ़ता हो।
मतलब ईश्वर ने हमें आनंद के लिए ही रचा है।
बिल्कुल, समस्या ये है कि हम सतही खुशी को ही सच्चा आनंद मान लेते हैं। डॉक्टर हामन स्पष्ट करते हैं कि सच्चा आनंद कभी भी अनुशासन के खिलाफ नहीं होता,
बल्कि वह सही दिशा में किए गए अनुशासन का ही अंतिम परिणाम होता है।
जी, पॉलुस इस आनंद को पूरा करने के जो पांच तरीके बताते हैं, वे इसी अनुशासन का हिस्सा हैं। समान प्रेम रखना, पूर्ण सहमति में होना, एक ही मन का होना, स्वार्थ या अहंकार से कुछ न करना और दूसरों के हितों का ध्यान रखना।
जब हम इन पांच तरीकों को सुनते हैं, विशेष रूप से एक ही मन का होना या पूर्ण सहमति में होना, तो ये थोड़ा डरावना लग सकता है।
डरावना क्यों?
क्योंकि क्या इसका मतलब ये है कि समुदाय के हर व्यक्ति को एक रोबोट की तरह सोचना होगा? मतलब क्या हमारी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाएगी?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही मन का होना का मतलब ये नहीं है कि हमें हर छोटी बात पर सहमत होना है, जैसे हमें खाने में क्या पसंद है या राजनीति में हमारी क्या राय है।
तो फिर इसका असली मतलब क्या है?
डॉक्टर हारमन समझाते हैं कि इसका अर्थ है जीवन के अंतिम लक्ष्य और मूल्यों के प्रति एक साझा दृष्टिकोण रखना। ये ऐसा है जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में कई अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं।
अरे, ये ऑर्केस्ट्रा वाली बात बहुत सटीक है। वे सब एक जैसी आवाज नहीं निकालते, लेकिन वे सभी एक ही संगीत की धुन को पढ़ रहे होते हैं।
बिल्कुल,
और वे एक ही कंडक्टर के इशारे पर बजते हैं। इसी तरह अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोग जब एक ही प्रेम और उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं, तो वो पूर्ण सहमति पैदा होती है जो आनंद लाती है।
हाँ,
लेकिन हम सब जानते हैं कि इस ऑर्केस्ट्रा को बेसुरा करने के लिए सिर्फ एक अहंकारी संगीतकार ही काफी होता है।
एकदम सही बात है।
और ये हमें आनंद पूरा करने के उन पांच तरीकों में से सबसे कठिन और सबसे चुनौतीपूर्ण तरीके की ओर ले जाता है, मतलब स्वार्थ को छोड़ना।
जी, ये सबसे मुश्किल हिस्सा है।
अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत में एक ऐसा शब्द आया है जिसने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। किंग जेम्स बाइबल में स्वार्थी महत्वाकांक्षा के लिए एक पुराना अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल हुआ है, वेन ग्लोरी।
हाँ, व्यर्थ की महिमा, ये मूल रूप से यूनानी शब्द केनोडॉक्सिया का अनुवाद है, जो दो शब्दों से बना है, खाली और महिमा।
मतलब एक ऐसी महिमा जिसका कोई वास्तविक वजन नहीं है, एक ऐसा सम्मान जो बाहर से सोने जैसा चमकता है लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला है।
एकदम सही। और क्या ये आज के हमारे सोशल मीडिया ड्रिवन समाज का बिल्कुल सटीक वर्णन नहीं है?
पूरी तरह से। हम चारों तरफ देखते हैं कि लोग दिन रात एक आभासी दुनिया में लाइक्स, शेयर्स और व्यूज के पीछे भाग रहे हैं। एक तस्वीर पोस्ट की जाती है और फिर इंसान घंटों स्क्रीन को घूरता रहता है।
हाँ, ये देखने के लिए कि कितने अनजान लोगों ने उसे सराहा। ये वैनग्लोरी का सबसे आधुनिक और खतरनाक रूप है।
बिल्कुल, ये कुछ पलों के लिए हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक झोंका भेजता है। हम ऐसा महसूस कराता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन जैसे ही फोन की स्क्रीन बंद होती है, वह महिमा हवा में गायब हो जाती है।
वही तो, ये इंसान को अंदर से और भी ज्यादा अकेला, असुरक्षित और खाली कर देती है।
ये खालीपन इसलिए महसूस होता है क्योंकि हम उस चीज से पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई पोषण है ही नहीं।
लेकिन अगर हम इसे व्यापक ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ 21वीं सदी के इंटरनेट की समस्या नहीं है।
जी, ये मानव स्वभाव की एक बहुत पुरानी बीमारी है। हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें पॉलुस ये लिख रहे थे।
अच्छा, मतलब पहली सदी की ग्रीक और रोमन दुनिया में।
हाँ, वहाँ समाज पूरी तरह से सम्मान और शर्म की व्यवस्था पर चलता था। वहाँ समाज के हर स्तर पर, चाहे वो सम्राट हो या कोई आम नागरिक, हर कोई अपनी महिमा और रुतबा बढ़ाने की अंतहीन दौड़ में लगा था।
मैंने पढ़ा है कि रोमन साम्राज्य में तो शक्तिशाली लोग अपने से कमजोर लोगों को संरक्षण भी सिर्फ इसलिए देते थे ताकि समाज में उनकी वाहवाही हो सके। वहाँ कुछ भी निस्वार्थ नहीं था।
बिल्कुल, हर मदद के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा होता था कि इसके बदले में मुझे क्या सम्मान मिलेगा।
तो उस दौर में विनम्रता को कैसे देखा जाता था?
उस समाज में विनम्रता को कोई गुण या नैतिक अच्छाई माना ही नहीं जाता था। आज हम भले ही विनम्र लोगों की तारीफ करते हैं, लेकिन रोमन काल में इसे दासों और कमजोरों की निशानी माना जाता था।
मतलब किसी के सामने झुकना या दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखना एक आजाद रोमन नागरिक के लिए घोर अपमान की बात थी।
ऐसे समाज में जब शुरुआती ईसाइयों ने ये दर्शन पेश किया कि विनम्रता एक उच्च मूल्य है और दूसरों को खुद से श्रेष्ठ समझो, तो ये सिर्फ एक नया विचार नहीं था।
तो ये क्या था?
ये उस समय के सामाजिक ताने बाने पर एक सीधा हमला था। ये पूरी तरह से संस्कृति के विपरीत, यानी काउंटर कल्चरल था। पॉलुस कह रहे थे कि सच्ची महिमा खुद को ऊपर उठाने में नहीं, बल्कि स्वेच्छा से खुद को नीचे करने में है। उठकर ये चुनना होता है कि आज मैं खोखली महिमा के पीछे नहीं भागूंगा।
सैद्धांतिक रूप से ये सुनना बहुत ही प्रेरणादायक लगता है कि अपनी महिमा को त्यागो और विनम्र बनो। लेकिन हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं।
ये तो है।
जब हम इस ऊंचे दर्शन को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं तो कहानी बहुत जटिल हो जाती है। क्या होता है जब हमारी भावनाएं हमारा साथ देना बंद कर देती हैं?
ये किसी भी दार्शनिक या धार्मिक सिद्धांत की असली और सबसे कठोर परीक्षा होती है।
वही तो, अगर सच्चा आनंद दूसरों को प्राथमिकता देने में है तो हम तब क्या करें जब हमारे अंदर दूसरों के लिए रत्ती भर भी प्यार या ऊर्जा ना बची हो?
डॉक्टर हार्मन इस प्रक्रिया को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। वो इसे चार स्पष्ट कदमों में बांटते हैं: सोचना, विश्वास करना, इच्छा करना या महसूस करना, और अंत में करना।
अच्छा, तो मतलब थिंक, बिलीव, फील और डू।
बिल्कुल। समस्या तब आती है जब हम इस क्रम को बदल देते हैं या किसी एक कदम पर अटक जाते हैं।
हाँ, और आज के आधुनिक मनोविज्ञान और सेल्फ केयर संस्कृति ने हमें ये सिखाया है कि हमारी भावनाएं ही हमारा अंतिम सत्य है।
जी, हमें सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो वो काम मत करो, या खुद को थकाकर दूसरों की मदद करना टॉक्सिक है।
ऐसे में एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में 10 घंटे की बहुत ही तनावपूर्ण शिफ्ट के बाद घर लौटता है, वो पूरी तरह टूट चुका है।
वो बस सोफे पर गिरकर कुछ देखना चाहता है।
हाँ, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके जीवन साथी ने भी एक लंबा दिन बिताया है और रसोई में सिंक जूठे बर्तनों से भरा है।
उस वक्त उस व्यक्ति के अंदर कोई समान प्रेम या गहरा स्नेह महसूस नहीं हो रहा होता।
बिल्कुल, उस वक्त उसके अंदर सिर्फ चिड़चिड़ाहट और थकान होती है। अगर ऐसे हालात में वो व्यक्ति बिना मन के बस एक कर्तव्य समझकर बर्तन धोता है तो क्या वो प्यार नकली नहीं कहलाएगा? क्या वो ढोंग नहीं है?
देखिए, ये आज के युग का सबसे बड़ा भ्रम है कि अगर कोई काम भावनाओं से प्रेरित नहीं है तो वो काम पाखंड है।
अच्छा,
डॉक्टर हामन बाइबल के दृष्टिकोण से इसे स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर हमारी थकावट या हमारी भावनाओं की कमी को निस्वार्थता से बचने की कोई छूट या फ्री पास नहीं मानता।
तो आध्यात्मिक सच्चाई क्या है?
सच्चाई ये है कि भावनाएं हमेशा हमारे फैसलों का नेतृत्व नहीं करती, अक्सर वो हमारे फैसलों का अनुसरण करती हैं।
हम ये सोचकर बैठे रहते हैं कि पहले आसमान से हमारे अंदर प्यार और ऊर्जा की कोई जादुई भावना उतरेगी और फिर हम बर्तन धोएंगे,
लेकिन तंत्र इसके ठीक विपरीत काम करता है।
तो क्या आप कह रहे हैं कि कर्म से भावना पैदा होती है?
स्पष्ट रूप से, जब हम अपनी भावनाओं के खिलाफ जाकर आज्ञा पालन का चुनाव करते हैं ना, जब वो थका हुआ इंसान सोफे से उठकर बर्तन धोना शुरू करता है, तो उस निस्वार्थ कर्म के बीच में वो प्यार खुद ब खुद पैदा होने लगता है।
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सामने वाले के हित को अपने आराम से ऊपर रख रहा है। ये बहुत ही गहरी बात है।
इसी हमारे खाते में जमा है तो हम उस ब्रह्मांडीय आनंद नाशक वाले मिथक को तोड़ देते हैं।
तो इसके लिए हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं?
डॉक्टर हामन इसके लिए एक बहुत ही छोटा लेकिन शक्तिशाली कदम सुझाते हैं। वो ये नहीं कहते कि रातों रात कोई बहुत बड़ा बलिदान दे दो।
तो वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि इस सप्ताह समय, ऊर्जा या धन का उपयोग करके किसी के लिए निस्वार्थ प्रेम का सिर्फ एक ठोस काम करें। बस एक काम।
सिर्फ एक ठोस काम, जहां आप बदले में किसी थैंक यू, किसी सोशल मीडिया पोस्ट या किसी भी तरह के सम्मान की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल, आप बस वो काम कर रहे हैं बिना ये परवाह किए कि आपकी भावनाएं उस वक्त क्या कह रही हैं।
और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनजाने में उस सच्चे आनंद के दरवाजे खोल देते हैं जिसके लिए हम तड़प रहे थे। हम अपनी इच्छाओं के उस छोटे से दायरे से बाहर निकल आते हैं।
ये सच में एक बहुत ही सुंदर और गहरा विरोधाभास है।
हाँ, जितना अधिक हम आनंद को खुद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही रेत की तरह हमारी उंगलियों से फिसल जाता है।
लेकिन जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा के लिए अपनी मुट्ठी खोल देते हैं तो वो आनंद हमारे जीवन को पूरी तरह से भर देता है।
आज की इस विस्तृत और दिलचस्प चर्चा को समेटते हुए अगर हम पूरे परिदृश्य को देखें तो ये स्पष्ट है कि असली आनंद का मार्ग स्वयं की ओर नहीं जाता बल्कि दूसरों की ओर जाता है।
जी, और ये कोई ऐसा बोझिल नियम नहीं है जिसे हम अपनी ताकत से पूरा कर सकते हैं। ये उस साझा जीवन का स्वाभाविक परिणाम है जहां प्रोत्साहन और सांत्वना की नींव पहले से ही मजबूती से रखी जा चुकी है।
तो इस चर्चा के अंत में हमारे पास विचार करने के लिए एक गहरा और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल है। जैसा कि हमने बात की, प्राचीन रोमन काल में विनम्रता को कमजोरी माना जाता था,
लेकिन क्या आज की हमारी आधुनिक दुनिया भी वास्तव में कुछ अलग है?
वही तो, यहां भी खुद को साबित करने, अपना पर्सनल ब्रांड बनाने और दूसरों को कुचलकर सबसे आगे निकलने को ही सफलता माना जाता है।
बिल्कुल,
ऐसे में यह एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या खुद की महिमा उस खोखली वैनग्लोरी के इस अंतहीन दौड़ में भागते हुए हम अनजाने में उस सच्चे, गहरे और साझा आनंद से खुद को वंचित तो नहीं कर रहे हैं
जिसे महसूस करने के लिए हमें मूल रूप से डिजाइन किया गया था?
क्या हमारी ये सोची समझी ताकत और स्वतंत्रता ही वास्तव में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है?
ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए।